हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 20 इसके आगे अध्याय 4 का दिव्य ज्ञान। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति इस भावना से युक्त हो कि मैं अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण का दास हूं और मेरा कर्तव्य एकमात्र यही है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं भी मेरे चित्त में आ रहा है और वो ये है कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्यागना। पूर्ववत हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं अगर और उसकी वजह से हमें कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसकी उस लाभ को हमें खुद भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और साथ ही साथ इस समय हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आगे जो अच्छा कर्म फल आएगा उसको मैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए भोगूंगा। सो जो भी हमारे पास भगवान की कृपा से कुछ अच्छे कर्मों की वजह से हमारे पास कोई योग्यता है कोई शक्ति है कुछ भी है उसका उपयोग हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास धन है, किसी के पास तेज है, बुद्धि है, बल है, तो उनका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए ये समझते हुए कि ये वस्तुएं भगवान का उपहार है और भगवान की हैं जो हमें दी गई हैं ताकि हम उनका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकें। एक बात ये। दूसरा, एक भौतिकतावादी व्यक्ति ये सोचता है कि अब मेरे अच्छे कर्मों की वजह से ये वस्तुएं अब मेरे को प्राप्त हैं और ये मेरी हैं। भले ही वो ये समझे कि ये वस्तुएं मेरी मुझे दी गई हैं लेकिन फिर भी उसके मन में भावना बनी रहती है कि ये वस्तुएं मेरी हैं, इनको भोगने का अधिकार एकमात्र मुझको है। तो इस भावना से युक्त जो व्यक्ति है वो भौतिक भावना भावित है, सोचना समझना चाहिए। तो इसलिए हमें इस प्रकार की आसक्ति को त्यागना चाहिए और भोग की वासना के बजाय कृष्ण की सेवा से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वशी कार्य करता है, फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यानी कि कृष्ण की प्रीति के लिए ही वो ऐसा वक्त कार्य करता है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है तो ये कृष्ण भावना भावित होने की जो चेतना है ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, वो अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जप और भगवद्गीता को श्रवण करने से हमारे चित्त का जो मार्जन होता है इससे ये हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण भावना भावित होने की ये अपने आप प्रकट होती है। यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अथवा अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं और इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई बैंक का कोई कैशियर है तो बहुत सारे पैसे गिनता है और बहुत सारे पैसे गिनता है आते समय और बहुत सारे पैसे गिनता है जाते समय, लेकिन उन पैसों के आने जाने से कैशियर का कोई संबंध नहीं है, उसका दायित्व तो बैंक के ऊपर होता है। उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करते हैं, अपने कार्य का संबंध कृष्ण से जोड़ के करते हैं, तो व्यक्ति बड़े आसानी से कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है, बल्कि तुरंत ही मुक्त हो जाता है। जैसे व्यक्ति कोई प्रसाद बनाना चालू कर रहा है, खाना बना रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है, मैं इसे भगवद्गीता बोल रहा हूँ, तो इस प्रकार के कार्यों में व्यक्ति लगेगा तो तुरंत ही कर्म बंधन के मुक्त से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर ये विज्ञान है, क्योंकि हम अपना कार्य करना बंद नहीं करते हैं, खाली उसके स्विच को चेंज कर देते हैं, उसका देश चेंज कर देते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन अगर व्यक्ति इस प्रकार से प्रशिक्षित हो जाए तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ओके, निराशीर यत चित्तात्मा तप्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आप्नोति किल विषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। एक चीज हमें देखनी चाहिए, संयमित मन का अर्थ है कि मन में जो भोगी इच्छाएं आ रही हैं, हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, अपने को बाध्य समझने लगते हैं। और जब इस प्रकार से हम अपने को बाध्य समझने लगते हैं, फिर बुद्धि अपना कार्य करती है विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में, ताकि उस भोग की क्रिया को संपन्न किया जा सके। और एक और बात है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के स्वामित्व को त्यागना। अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें तो इस जगत में कोई भी वस्तु हमारी है नहीं, हम कोई वस्तु साथ में लेके नहीं आए थे, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम इसमें से कोई भी वस्तु साथ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन बीच में हम इस कह सकते हैं मोह में फंसे रहते हैं कि वस्तुएं हमारी हैं और इनका उपयोग मुझे अपने लिए करना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें कर्म केवल शरीर के निर्वाह करने के लिए करना चाहिए, यानी कि शरीर का निर्वाह बिना कर्म किए नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी ये भी शिला भक्ति शिला जीवन को स्वामी समझाते हैं भक्ति स्वामी सिंधु में, कि केवल शरीर निर्वाह करने के लिए नहीं अपने को कर्म करना है, बल्कि भक्ति निर्वाह के लिए कर्म करना है। मानव जीवन जो मिला है वो भक्ति करने के लिए है, तो इतना हम इकट्ठा कर सकते हैं जिससे हमारी भक्ति जो है वो सुचारू रूप से चले। अब इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्यक्ति अगर बहुत अधिक इकट्ठा करता है, या जो भी उस वस्तु उस व्यक्ति के पास होता है, हर वस्तु उसकी चेतना का कुछ भाग को खा लेती है, और इस प्रकार से उसकी चेतना कृष्ण में लगाने के बजाय उन वस्तु में विकीर्ण हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई हम फोन भी रखते हैं तो बार बार उसके मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं जो खराब हो जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम फोन नहीं रख सकते, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी अधिक वस्तु में हम रखेंगे वो हम हमारी सेवा में हमारी मदद करने के बजाय हमारी सेवा से हमको च्युत भी कर सकते हैं, हमारी चेतना को एटलीस्ट च्युत कर सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं, वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है लाइन, एग्जाम्पल प्रभुपाद जब देंगे आगे जरा ध्यान देखिएगा। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता अपितु सारी शरीर की चेष्टा से हिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम समझ में आना चाहिए कि हम कुछ कार्य करते हैं तो ऐसा लगता जरूर है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। भगवान की आज्ञा से ही हम कोई कार्य कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति नहीं है। तो इसमें एक काफ़ी एप्लीकेशन के पॉइंट्स हैं। एक, मान लीजिए हम भक्ति का कोई कार्य कर रहे हैं या सामान्यतः कोई भी कार्य कर रहे हैं और वो असफल हो जाता है, तो इसके लिए हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं होगा, भगवान उसकी अनुमति नहीं देंगे, तब तक वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो भक्त को यही समझ में आना चाहिए कि अगर उसने खूब प्रयास किया है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और फिर भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो उसका अर्थ यही है कि भगवान अभी चाहते हैं कि हम थोड़ा प्रतीक्षा करें। और जिन भी कार्यों को कर रहे हैं उसको भक्त करता पूरे दायित्व के संग और उत्साह के संग है, लेकिन यही भावना में समझते हुए कि मैं निमित्त मात्र हूँ इस कार्य को करने के लिए, अंततोगत्वा भगवान मुझको इस सेवा में नियोजित कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य यही है कि सेवा के द्वारा कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाएं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि इसकी निजी इंद्रियों की कोई कामना नहीं रहती। वह यंत्र के पुर्जे की बात ही हिलता डुलता है, जिस प्रकार रखरखाव के पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। तो इसी बात को मैं समझा रहा था, केवल शरीर चलाने के लिए नहीं, अभी तो भक्ति ठीक से कर सके उसके लिए शरीर चलाना होता है। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चिष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रखे। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त तन फलों से मुक्त रहता है। कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे कोई पशु है और उसका मालिक बहुत क्रूर होता है तो उसे पालता तो जरूर है लेकिन बाद में मार डालता है, तो जिस प्रकार से पशु विरोध नहीं करता है ऐसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो पशु के समान तमोगुण में है, नहीं, अपितु उसके हृदय में शुद्ध भक्ति के द्वारा, जो उसका हृदय शुद्ध हो गया है तो भगवान के चरणों में शुद्ध श्रद्धा उसके हृदय में है और वो समझता है कि जब भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं तो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। तो ये इसका आधारभूत बात है, भगवान से अपने संबंध का अनुभव करना। जब भगवान से अपने संबंध का अनुभव करते हैं और ये समझते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं और वो कितने शक्तिशाली हैं तो व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं होती और वो व्यक्ति को हृदय में ही रहता है कि भगवान जिस भी परिस्थिति में मुझको रख रहे हैं या रखेंगे वो मेरे लिए अच्छी है, तो इसलिए कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन ये श्रद्धा का बहुत उच्च स्तर है, भले ही हम शुरुआत में स्तर पर ना हों लेकिन भक्ति करते करते व्यक्ति स्तर पर आ जाता है। और एक और बात यहाँ है कि पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि अपने पास कोई भौतिक वस्तु रखे, यानी कि भोग के लिए कोई वस्तु ना रखे। इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं होती, अपितु भौतिक भोग के लिए कोई वस्तु इकट्ठा नहीं करते हैं। और जीवन रखने का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति करना, इसलिए जो साधनों का उपयोग करता है वो भी भगवान की सेवा के लिए ही रखते हैं। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और वो पापों से भी मुक्त रहते हैं, क्योंकि अधिक भोग की सामग्री इकट्ठा करने से व्यक्ति पाप करने की प्रवृत्ति में संलग्न हो जाता है। आगे और शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके गुणों के बारे में, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण।